number very good for listening. We are listening to HG Education IPG Counseling class at Dolly Temple, recorded on 20th January 2015, Tuesday. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। अभी आजकल तो अभी हम लोगों ने पंजाबी बाग मंदिर से एक भक्ति वृक्षा का महामिलन किया, तो उसमें 800 से 1000 डिवोटीज जो भक्ति वृक्षा में जाते हैं वही अलाउड थे, मतलब वही आए। अराउंड 43 भक्ति वृक्षा चल रहे हैं पंजाबी बाग से, और उसने कुछ समय से प्रीचिंग रोकी भी हुई थी इसलिए क्योंकि कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स थे जो कि चाहते थे वो कि सभी लोग प्रॉपरली ट्रेन हो जाएं एज अ लीडर, तो उनकी ट्रेनिंग हुई काफ़ी लोगों की, नए लीडर्स भी बने, उन्हें भक्ति वृक्षा दिए गए, अभी और लीडर्स तैयार हो रहे हैं। तो अब जो हैं जो पिछले 3-4 साल से शायद वहाँ पर ज़्यादा भक्ति वृक्षा नहीं शुरू किए थे, अब कर रहे हैं, तो ये अगले साल तक 90 तक पहुँच जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर एक डिबेट हो रही थी, एक डिबेट का भी था, ड्रामा भी था, डिबेट भी थी। डिबेट में आजकल जैसे कई फिल्में इस तरह की आ रही है जिन मूवीज में ये दिखाया जाता है कि, या इस तरह से दिखाया जाता है कि धर्म के नियमों का पालन करना या धर्म की आवश्यकता क्या है, या कई उसके रिचुअल्स ऐसे हैं जो आज के हिसाब से ठीक नहीं है, या धर्म के बीच में लड़ाई होना, या मूर्ति पूजा के विषय में, तो इस प्रकार फिल्मों के माध्यम से उसको क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है ताकि लोग जो है इन पुरानी बातों को भूल जाएं। तो वहां पर भी डिबेट हुई इस तरह की, और तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हैवी रहा देखने में, बहुत लोग अच्छे आंसर दे भी रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सब हम लोगों को भी मिलते ही हैं बाहर। अगर हम लोग अपने परिवारों में भी जाएं तो एक डिवोटी माता जी हैं, वो रोज आती हैं, मंगला आरती आती हैं, लेक्चर भी सुनती हैं, लेकिन लेक्चर में आना, लेक्चर सुनना, अपनी भक्ति करना, लेकिन घर के लोग जब पीकी की जरा या कांजी भाई की जरा बात करने लग जाए, ओ माई गॉड एक मूवी आई थी जिसमें कांजी भाई भी होते हैं, वो भी बड़े प्रश्न करते हैं। तो घर वाले, क्योंकि पहले ही जो लोग भक्त हैं बेचारे, जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे गुणों को अपने अंदर ला रहे हैं, तो सबसे पहले तो दुश्मन उसके घर वाले ही होते हैं। पहली बात तो वो अपनी साधना से ही पहले स्ट्रगल करता है, तो पहले तो खुद का स्ट्रगल होता है, और दूसरा उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस, उसके मित्रगण, वो कमी नहीं छोड़ते। और फिर कोई ऐसी घटना हो जाना या कोई ऐसी खबर मिल जाना जिसके माध्यम से भक्तों की निंदा होती हो, या उनकी कोई गलती पकड़ी जाती हो, या उनका पैसा इधर उधर जाता है, या उनके कोई गुरुजन कुछ गलत करते मिलते हैं, तो अगर इस प्रकार की घटना कहीं पर हो जाए या इस तरह की, तो फिर वो और क्या हो जाते हैं, एग्रेसिवली प्रभावशाली हो जाते हैं उन भक्तों की निंदा करने में या उनका मजाक उड़ाने में, है कि नहीं? आपको फेस करना पड़ता है, किस किस को करना पड़ा जैसे कि और फिर हम लोग कहीं ना कहीं लीडर भी हैं, तो अगर आपके पास अगर कोई ऐसा एग्जांपल नहीं आया तो आपके मेंबर्स के पास आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ जिस लेडी का, उसके बच्चे ने भी पूछा कि क्या जरूरत है मंदिर जाने की, भगवान तो हजर है, क्या आप वहां पे लगे रहते, है ना। और फिर उसमें एक रॉन्ग नंबर करके भी फिल्म में जो है बताया गया कि मतलब जो गलत जगह है वो रॉन्ग नंबर, ऐसा करके, या जो मंदिर जो डर गया वो मंदिर गया, ऐसा करके। तो पहले तो बड़ा मुश्किल है भक्त का, किसी व्यक्ति का विश्वास भगवान तक लगाना, भगवान तक पहुंचाना, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस पर विश्वास बनाए रखना, है ना, कितनी मुश्किल से विश्वास होता है। और फिर ऐसे विश्वास के बाद जब ऐसे लोग भी सर उठा के सामने खड़े हो जाएं, है ना, तो और मुश्किल लगता है कि ये तो और भी बढ़ गए, पहले ही माया इतनी है और उसके बाद फिर ये लोग भी जो है हमारी खिंचाई कर रहे हैं। हाँ जी, विरोध करने वाले ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे में कई बार भक्त जो है बेचारा इस प्रकार के प्रभाव के अंदर भी आए कि छोड़ो शायद मैं ही गलत हूं, है ना, और या नहीं छोड़ता तो भी मतलब कंफ्यूज तो रहता ही है, और फिर उसकी खुद की स्ट्रेंथ, खुद की शक्ति, उसकी वाक्पटुता या उसका शास्त्रों का ज्ञान या मार्ग पर उसका विश्वास भी इतना नहीं होता कि वो दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर सके, तो ये भी समस्या आती है। तो हम लोग ये तो बोल नहीं सकते सब भगवान की लीला है, हर प्रश्न का उत्तर ये तो नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि ठीक है आप रुकिए हम पूछ के बताएंगे, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो जब लोगों को किसी बात का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्या बन जाते हैं, कोई नास्तिकता की तरफ से ले आते। आपने कोई प्रश्न किया, किसी व्यक्ति ने कहीं कोई जिज्ञासा करी और कहीं उत्तर सही नहीं आया, तो क्योंकि जिज्ञासा किसके लिए कर रहा है वो, कि ठीक है अगर मैं मान लू कि तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तो मुझे इस बात का उत्तर दो, और अगर सही समय पे सही प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है इसका मतलब इसको नहीं बताया उत्तर है ही नहीं, तो मेरा मन जो कहता था बेकार की चीजें ये सब तो बेकार की छोड़ दो। हाँ, तो मन जो है मदद करता है हमारी, वैसे तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है और थोड़ा बहुत संस्कारों के माध्यम से या भक्तों की कृपा से कोई थोड़ा बहुत आने की कोशिश भी करता है या आ भी जाता है तो क्या होता है, हमारा मन या हमारा जो संशय है जिसका उत्तर नहीं मिला वो और हमें कन्विंस करता है कि छोड़ो बेकार की चीज है, जो सारे दुनिया कर रही है वही कर लेते हैं, है ना, इतने सारे लोग इतनी मात्रा में नर्क जाएंगे तो ठीक है, फिर जो सबके साथ होगा तो हम भी ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। तो ये होता है, तो इस तरह भक्तों को जो है प्रयास करना चाहिए कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े और नोट्स भी जरूर बनाए कि किस पेज पर किस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है और इसका क्या प्रश्न बनता है। तो उससे क्या फायदा होगा कि कल को अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हम उसको तब देख सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे तो हमारा जो 7 दिन का जो कोर्स होता है 7 डे सेशन कोर्स, उसमें इस प्रकार के नास्तिक संशय से युक्त व्यक्ति के सारे संशय धुल जाते हैं, लेकिन वो कोर्सेज हम रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते हैं, एक ही कारण है। दूसरा, फिर भक्ति ऋषि प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भी एक मॉड्यूल है जिसे फॉलो करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का जो संशय है, कई बार हो सकता है लीडर वो तैयारी कर नहीं आया, प्रश्न वो कर ले तो उसका जवाब नहीं देते तो फिर परेशान होता है क्योंकि उससे और क्वेश्चन निकलेंगे, और फिर इस तरह की फिल्में आ जाए या सरकार का कुछ इंसिडेंट हो जाए तो फिर उसके उत्तर भी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी माध्यम बनता है लोगों का संशय ना मिटाने में, उससे फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर हम जो चल रहे थे जैसे चल रहे थे वही ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे भक्त जिनका थोड़ा बहुत अच्छा विश्वास है भक्ति के मार्ग पर, जो प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो उनको क्या होना चाहिए, इनको और एक्सपर्ट होना चाहिए, इनको और अध्ययन करना चाहिए, इनके खुद के प्रश्न भी पूरी तरह से क्या होने चाहिए, आंसर्ड होने चाहिए, ताकि वो कल को दूसरे को मदद कर सके। फिर पूछने वालों के लिए भी बताया जाता है कि भगवद गीता में कहा है कि आप जब गुरु के पास जाएं तो विनम्र भाव से जाएं, उनकी सेवा करें, तब उनसे प्रश्न करें। क्या श्लोक वो उपदेशन थी दे ज्ञान अध्ययन तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न कि उनके पास जाओ, प्रणिपात करो, नाम इत्यादि करो, सेवा करो और फिर उनसे जिज्ञासा करो, क्योंकि वो सत्य को जान। तो इसका मतलब क्या है कि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन ने भी जब अपनी जिज्ञासा पूछनी शुरू करी उससे पहले उसने शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे बस की नहीं है और मैं आप पूरी तरह से विचलित हूँ, है ना। कार्पण्य अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना जो अपने भूला जा रहा हूँ सब कुछ, तो मेरे लिए श्रेय कर क्या है वो आप बताइए, तो मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। तो जब दो पार्टी होती हैं, एक शिष्य स्वीकार करता है शिष्यत्व और दूसरा उसको उत्तर देने का प्रयास करता है, तो एक माहौल होता है। जिज्ञासाएं अगर सही हैं, सही मूड से की जा रही है, सही भाव से की जा रही है, तो उनके उत्तर मिलते हैं और भगवान ने भी दिए, सुखदेव गोस्वामी जी ने भी दिए परीक्षित महाराज को, क्योंकि ही वॉज वेरी रिसेप्टिव, वो तो पूरे मूड में आए थे कि यस मुझे सुनना है, समझना, सीखना है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने, जैसे शौनक आदि ऋषि इत्यादि जब एकत्रित थे इतने हजारों की संख्या में सारे, तो जब सूद गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किए, तो सूद गोस्वामी जी ने भी यही बोला कि तुम्हारे जो प्रश्न है ये वास्तव में बहुत लाभकारी है। किसके लिए? जो पूछ रहे हैं कि उनके डाउट खत्म होंगे, बोलने वाले को भी सेवा मिल गई और सारा संसार का भला होगा। तो वो जो प्रश्न उत्तर जो है आज के समाज में जिस प्रकार पेश किए जा रहे हैं या जिस तरह लोग हमसे अप्रोच करके पूछना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जो उनका भाव होता है जीत का, या घमंड के साथ पूछते हैं, या तो वो ना तो शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, ना ही रिसेप्टिव मोड में, ना उसने सेवा करी और ना ही प्रणिपात था, ना ही हम्बल है, इस प्रकार का मोड ही नहीं। जनरली लोग कमर पे हाथ रखकर और ऐसे करके पूछते हैं ना? तो ये कोई भाव ही नहीं प्रश्न पूछते। और फिर ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? कन्विंस भी करना है। और हम लोग हर एक व्यक्ति से ये आशा भी नहीं कर सकते कि वो अर्जुन की तरह शिष्य स्वीकार करेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं ऐसे ही व्यक्ति को आंसर दूंगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा, कोई नहीं आएगा हाथ जोड़ के, बड़ा मुश्किल है। मतलब आएंगे कुछ लोग तो आएंगे, लेकिन सब नहीं आएंगे। और महाप्रभु की आज्ञा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण को देखो, आपको कृष्ण का उपदेश करना है उसको बिना कन्विंस किए, क्योंकि समाज में भी तो तीनों गुणों के लोग रहते हैं, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी। और जो सतोगुण में है, जो पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति की, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तो स्वतः ही वो भक्ति से आकर्षित हो जाता है, नियमों से आकर्षित हो जाता है, और वो जिस स्तर पर उसने भक्ति छोड़ी थी उस स्तर से स्वीकार शुरू कर। तो कुछ लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जिनका तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्राउंड है, बस वो आए उसके हाथ में माला दो, सीधा 16 पे चार नियम और सीधा दीक्षा और गया है। देखिए अभी आप में से भी कुछ हो सकते हैं कि जिनके सामने जब पहली बार कृष्ण भावना में इंट्रोड्यूस किया गया तो वो क्या हो गए, एकदम भक्त बन गए। कुछ लोग जो रजोगुण में ज्यादा रहते हैं या जिनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, पुण्य थे, ऐसे लोग थोड़ा सा इंक्विजिटिव होते हैं, हर बात प्रश्न करते हैं, स्ट्रगल फील करते हैं, मन विचलित होता है, मटेरियल डिजायर्स ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को जब हम प्रचार करते हैं तो धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाते हैं, ज्यादातर उनको माला कराना मुश्किल हो जाता है, डाउट ज्यादा करते हैं, फेथ नहीं रहता उनका ज्यादा, तो एक ऐसी कैटेगरी के भी लोग। और फिर जो तामसिक वृत्ति के हैं वो तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहते। तो अलग अलग वैरायटी के लोग, लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस व्यक्ति को किस प्रकार टैकल करना है अगर हमारे सामने आ रहे हैं। अगर तो वो ऐसा है, मोड ऑफ गुडनेस में है और बहुत ही विनम्र भाव से आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ पूछना चाहता है, जिज्ञासा है, ऑलरेडी है, कुछ ना कहीं जाता है, कंफ्यूज है, तो ऐसा व्यक्ति को आप आराम से अगर प्रचार करते हैं तो वो भक्ति में आसानी से आ जाए। क्षमा करना। तो अब जिस प्रकार की फिल्में आ रही हैं और जिस प्रकार ये दुष्प्रचार चल रहा है, तो इसलिए फिर हमारे भक्तों को प्रभुपाद जी कहते थे पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, हमारा हर भक्त एक वकील की तरह होना चाहिए, जिसको श्लोक भी आने चाहिए, जिसको हर प्रश्न का उत्तर भी मालूम होना चाहिए, और जब कोई इस प्रकार की परिस्थिति आए तो लोगों के सामने वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपनी बात को रख सके। इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतनी सारी चीजें लिखी है प्रभुपाद, तो सबका अध्ययन होना चाहिए प्रभु। और जिस प्रकार एक कोर्ट में केस जीतने के लिए एक वकील हर प्रकार के रेफरेंसेस देता है, कई प्रकार के इंडियन पैनल कोड के धाराएं बताता है और फिर वो बात करता है, हवा में बात नहीं करता खाली, तो जज भी कन्विंस होता है, उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट देता है। उसी तरह हम लोगों को भी क्या चाहिए कि हम लोग माला कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, दीक्षा हो गई है, तो यहां खत्म ना होगा कि हर व्यक्ति हमारे इस मूवमेंट में प्रचारक है, और कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि कोई प्रश्न करे तो फिर उसको जवाब भी देना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते भाई हम तो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमारी तो होगी दीक्षा जी, आप भी लगे रहो, नहीं, उसको कन्विंस करना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करें जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप लोग बताइए क्या क्या प्रश्न ऐसे हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कुछ ये डिस्कस करें, ताकि हमारे पास इतना डाटा तो हो, इतनी समझ तो हमारी भी हो कि कोई अगर हमसे प्रश्न करे तो हमें क्या वो करनी चाहिए।
अभी कल की बात है, मैं जैसे महापुरुष आते ना, तो एक व्यक्ति ने पूछा, अरे महापुरुष मैंने आगे आए तो किस लिए गए, अरे भगवान के दर्शन करने, बोला यहाँ भी तो भगवान है, अब एकदम से स्ट्राइक नहीं करता ना माइंड में, तो मैंने कहा मसीह ने वैष्णव है, उनके दर्शन करने उनका आशीर्वाद लेने के लिए, बोले सब बेकार की बात है, मतलब उसको आंसर तो सेकंड टाइम मैंने दे दिया, लेकिन वो तीसरा फिर तो उसने उस तरह का तो फिर थोड़ा सा मन ही बदल।
खैर मैंने बताया ना, जो भक्ति कर रहे हैं सब लोग उनके एनवी, उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि बस किसी तरह हम ये सिद्ध करते हैं कि हम ठीक है आप गलत हो, कि जिस मार्ग पे हम हैं वो अच्छा है, आप बेकार का टाइम पास कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो कहीं कहीं सुना है, कहीं कुछ अपना पढ़ा है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर बातें करेंगे। अब उसको पहले इतनी बड़ी कहानी कहाँ बताओगे कि मायापुर धाम क्या है, वृंदावन धाम और मायापुर धाम अभिन्न है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्थापित करने के लिए आपको सारे शास्त्र कोट करने पड़ेंगे, है ना, तो इतना नहीं समझा पाओगे उसका, है कि नहीं। तो लोग आर्गुमेंट करने के लिए या ऐसे नीचा दिखाने के लिए भी बात करते हैं, तो उसे बहुत बता सकते कि ठीक है कई विशेष धाम है, धाम में जाना चाहिए, हम जाते भी हैं, उसमें से धाम भी है, गए थे अच्छा था, ठीक है ना। तो अगर उस तरह का फिर बात खत्म करके निकल सकते हैं, अगर कोई समझने नहीं चाहता। अब जो ये मूवीज आ रही है इसमें कोई प्रश्न आपके पास आए क्या, क्या है इसमें कुछ?
एक ने बोला कि
लेकिन जो लोगों ने देखी वो तो आपसे पूछेंगे।
एक ने दूध के लिए बोला कि दूध ना उसमें जा रहा है,
इसमें ये देख सकते हैं कई रिचुअल्स इस तरह हैं, जैसे हमारे वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हमारे वेद भी जो है तीन गुणों से के संबंधित ही है, जैसे सात्विक है, राजसिक है, तांसिक है, और उसमें उपासना कांड भी है, कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, है ना। तो जो कर्म कांड भाग है उसमें सभी जीवात्माओं को, जिसमें अधिकतर रजोगुण में है, तो रजोगुण में मतलब आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत रहती है, तो जिनकी इच्छाएं बहुत हैं तो फिर इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका उद्देश्य फिर इच्छाओं को पूरा करना होता है, उनको मुक्त होने का या गोलोक धाम जाने से कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए शास्त्रों में अगर जो व्यासदेव जी ने भी शास्त्र की रचना करी तो उसमें सब कुछ था, मिक्स था, खिचड़ी थी, तो परेशान थे, नाराज जी आए, उन्होंने कहा तुम्हारी परेशानी, कहते मैंने सब कुछ लिख दिया, उसके बाद भी मेरा मन में उस को शांति नहीं है, इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी। तो उन्होंने कहा कि आपका कारण यह है क्योंकि आपने ग्रंथों की रचना तो की है, लेकिन आपने केवल मात्र एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा अभी तक जिसमें कि खाली भगवान का गुणगान, आपने किया है दूसरे शास्त्रों में भी, बट हम सब कुछ ही डाल दिया, इसलिए आप एक ऐसा ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान के लीलाओं का ही वर्णन हो। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की रचना की, अमल इसलिए, और कैटअप धर्म कहते हैं हर तरह का निकाल देंगे, जो भी इस प्रकार का है जिसके अंदर स्वार्थ है या इच्छाएं पूरी करने का तरह का भाग, वो सब हटा दिया गया, किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं रखा। और अमल पुराण इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर केवल भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। तो फिर उनको सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन अन्य ग्रंथ लिखे, अन्य वेदों को, क्योंकि त्रिकालदर्शी भक्त सारी दिशाओं में या आने वाले फ्यूचर को भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, अभी का भी देखते हैं। तो आने वाले समय में लोग इतने निकृष्ट होंगे कि धर्म के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी, भौतिक इच्छाएं ज्यादा होंगी। उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति गधे को भी बाप बनाएगा। यानी कभी कहावत है कि समय आने पर तो व्यक्ति गधे को भी, मतलब उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए तो उसके लिए कुछ भी करेगा। तो जो कुछ भी करने का मतलब क्या है, सिर्फ शास्त्रों को मालूम है इस प्रकार रखा कि सीधा वो भगवान की तो भक्ति करेगा नहीं, मैं चाहूं सीधा गोलोक धाम। उसने देखा नहीं, उसने विश्वास नहीं है, उसने ग्रंथों पर विश्वास नहीं, तो कहते काम कैसे निकले, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी हो। फिर वो जब पंडितों के पास जाएगा तो रिचुअल्स पूछेगा कि मुझे को ये काम करवाना है, इसका उपाय बताओ, मैं इस दिक्कत में हूं, इसका उपाय बताओ। तो फिर वो वेदों की और अन्य ग्रंथों की ऋचाओं के उसके साथ अनुष्ठानों के हिसाब से, क्योंकि वो आया है इसलिए, तो पंडित भी कहता ठीक है इसीलिए आया है, तो भैया इसका इतना लगेगा, इसका ये करना पड़ेगा, इतना ऐसा करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा काम पूरा होगा, इससे तुम्हें ये मिलेगा। उसको लगता बड़ा ठीक है, तो कर लेते हैं। तो फिर इस प्रकार का व्यवहार शुरू होता है। पंडित जी को भी क्या है, उनको अपनी दक्षिणा चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं ये पूछ ही नहीं रहा तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ू, भाई गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, जहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता, मैं क्यों बताऊं, इसको तो ये काम करवाना है, इसको बोलूंगा ये पत्थर पहन ले, ये अंगूठी कर ले, ये पूजा करवा ले, शनि भारी है तो ये काम करवा ले, मैं तो ऐसे काम बताऊंगा जैसे कि वो चाहते हैं, ताकि मेरी दक्षिणा तो मुझे मिले, मेरा भी पेट भर गया, इसका भी काम हो गया। तो इस प्रकार वेदों में और इन ग्रंथों में जो अनुष्ठान बताए गए वो इसलिए कि जो व्यक्ति नास्तिक है, तामसिक था, राजसिक हुआ, राजसिक से अब उसकी इच्छाएं बहुत हैं, सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो चलो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करे। चलो देवताओं की शरण में जाए और उनसे अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए सारे वैदिक अनुष्ठान भी पूरे कर रहे हैं, ताकि उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए, वो साइंस एग्जामिन कर सके। तो इस प्रकार जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, धीरे धीरे फिर वो व्यक्ति क्या होता है, ऐसे स्तर पर भी पहुंचता है जब उसको लगता है कि अब मेरे को कोई इच्छा नहीं करनी, बहुत दिया है माँ ने, माता रानी ने बहुत दिया है ना, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं यहां गया, मैं वहां गया, सारी चीज। तो ऐसा व्यक्ति फिर जब निस्वार्थ हो जाता है काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि पुण्य और पाप के कर्मों का मिश्रित भोग भोगने के बाद, अलग योनियों में जाने के बाद, वापस मनुष्य बनने के बाद, फिर कुछ कर्म करने के बाद, इसी तरह के अनुष्ठानों में लगे लगे जब थोड़ा निस्वार्थ हो जाता है, तो फिर देवता लोग भी इस पर कृपा करते हैं क्या, कि ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान की शरण में भेजते हैं, जो क्योंकि निस्वार्थ हो गया, अभी कुछ नहीं चाहता। तो इसलिए जो इतने प्रकार के अनुष्ठान बनाए उसका उद्देश्य यह था कि व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब इस प्रकार के रिचुअल्स पूरे करेगा तो उसका धीरे धीरे शुद्धिकरण, लेकिन बहुत धीरे हुआ, तेज नहीं होगा। तो इस प्रकार के रिचुअल्स की स्थापना। तो आजकल जो चल रहा है, हमें अगर अपने धर्म का पूर्णता ज्ञान है तो हम दूसरे को भी कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इन मूवीज, इन फिल्मों के द्वारा ये दिखाया जाता है कि सब बेकार है, या मूर्ति पूजा क्यों करें, है ना। वेदों में तो वह शब्द आता है ना तत्र प्रतिमा अस्ति, कि उसकी अर्थात भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, वेदों का श्लोक कोट कर देंगे और वो कहेंगे यही बात हमारे धर्म में भी लिखी है कि उसकी खुदा की कोई मूर्त नहीं है, पोस्टर नहीं है, उनकी फोटो नहीं है, उनकी कोई इमेज नहीं है, नहीं है। तो हमारे ग्रंथ ये कह रहे हैं, तुम्हारे ग्रंथ ये कह रहे हैं, फिर तुम मूर्ति पूजा क्यों करते है कि नहीं। बच्चे हम लोग जैसे कहेंगे क्या बोलोगे, हमारे वेद भी कोट कर रहे हैं, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, क्या जरूरत है। जैसे आजकल एक वीडियो भी हमने कई जगह फॉरवर्ड किया था, उस वीडियो में भी किसी ने बोला भी मूर्ति पूजा करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हर जगह क्या है, भगवान है। तो भक्त ने जवाब दिया कि अगर हर जगह भगवान है तो फिर मंदिर में क्यों नहीं है। ये कहीं जाकर बोला था जर्रे जर्रे में खुदा है, भगवान है, तो उस जर्रे जर्रे से जब विग्रह बनाते तो उस जर्रे में नहीं होगा क्या? ये होगा। तो जब हर जगह भगवान है तो फिर मंदिर में भी है। हर जगह हवा है लेकिन उसको फील करने के लिए फैन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे बताते भक्त। फैन ऑन करोगे तो आपको ज्यादा हवा मिलती है, फैन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। उसी तरह उन्होंने बताया कि भगवान को भी विग्रहों के रूप में पूजने से पहले विग्रहों की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल देते हैं कि पानी पीने के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन यही पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में हवा में है, लेकिन हम वैसे डायरेक्ट नहीं पीते उसको चूस चूस के, है ना? हवा में कैसे पियोगे, ऐसे करके थोड़ी पियोगे। तो कहते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है और आपको पानी चाहिए। तो कहते हैं उसी तरह भगवान भी हर जगह व्याप्त है, लेकिन उनको विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा कराकर आह्वान किया जाता है, और फिर हम जैसे कंडीशन सोल से हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान उस विग्रहों के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं, भगवान तो गोलोक धाम में है, लेकिन जिस प्रकार आपको अपने किसी मित्र को चिट्ठी देनी है तो उसको आप क्या डालते हो, उसको लेटर बॉक्स में डालते हो और फिर वहां तक पहुंच जाती है, उसी तरह हम लोग भी इन मंदिरों का निर्माण करते हैं, विग्रहों को पूजते हैं और भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और ये भी वहां तक पहुंचती है जहां तक पहुंचानी है। और फिर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बाइबल में लिखा है कि मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मतलब भगवान बुद्ध ने जो मनुष्य बनाया उसने अपनी इमेज का बनाया, जैसे भगवान दिखते हैं वैसा बनाया, तो मतलब भगवान जैसे वैसा है, मनुष्य की भी ऐसी ही आकृति है। और फिर विग्रह के रूप में भगवान का होना और उनकी सेवा में लगना, इसका क्या लाभ है? फिर अगर कोई व्यक्ति बोले निराकार है, निराकार भी है लेकिन कितना मुश्किल है उनका ध्यान करना या उनकी सेवा करना, निराकार की सेवा कैसे करें, दिखेगा नहीं कहां पे, है ना? तो विग्रहों के रूप में जब भगवान के विग्रहों की रचना की जाती है तो उसका भी शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन है कि किस प्रकार विग्रह बनने चाहिए, किस पत्थर के बनने चाहिए और विग्रहों की क्या हाइट होनी चाहिए, गर्दन की कितनी हाइट होनी चाहिए, किस प्रकार, सारे पंचरात्र विधि इत्यादि में सब दिया है कई ग्रंथों में। और बहुत आसान होता है कि जो विग्रह जिस प्रकार भगवान दिखते हैं उस प्रकार बनाने के बाद भगवान के उन विग्रहों पर ध्यान लगाया जाए, तो एक आकृति होती है जो कि भगवान कहते हैं ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शक्ति, जो तीन प्रकार से भगवान का लोग पूजन करते हैं, निराकार रूप में और परमात्मा रूप में, और उसमें है कि भगवान इति शक्ति, भगवान के रूप में अर्थात द्विभुजा रूप भगवान, तो उस विग्रह पर ध्यान किया जा सकता है। फिर हम जैसी कंडीशन सोल जो संसार में है उनके लिए कितना आसान हो गया सेवा करना उन विग्रहों की, जिनको आप ध्यान कर सकते हो, जिनको वस्त्र पहना सकते हो, उनके वस्त्रों का सोच सकते हो डिजाइन, उनके लिए बनाने का मेहनत कर सकते हो, कपड़ा लाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, उनके लिए नाना प्रकार व्यंजन बना के उनको भोग लगाते हो, उनके आगे प्रणाम करते हो, उनके रूप का दर्शन करते हो, है ना, उनकी सेवा करते हो, तो इन सब क्रियाओं से हमारा पांच तत्वों का बना हुआ शरीर जो कि हमेशा समस्या ही देता है हमें, लेकिन क्योंकि इसी से कर्म करते हैं, इसी से कर्म होता है, इसी से पुण्य होता है, तो इसी पांच तत्वों से, पांच इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से बने शरीर से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। यही मन जो पूरी दुनिया में लगा रहता है, इसी मन से भगवान की सेवा के विषय में प्लान करते हैं, कैसे और अच्छी कर सके, भगवान का सुंदर रूप कैसा था, क्या विग्रह के ड्रेस पहने थे, तो जितने इतना अधिक आसान हो जाता है भगवान के बारे में सोचने कैसे या मन चिंतन करने के लिए और इस शरीर से उनकी सेवा करने के लिए, कि जितना अधिक वो सेवा करता है तो उतना अधिक वो गॉड कॉन्शियस तो रहता है ना। अब एक निराकारवादी है वो कितनी देर कर लेगा उसका शरीर से कितना कर, लेकिन हमारे सामने तो विग्रह हैं, उनकी सुबह शाम सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा लगे हुए हैं, तो वो उनके रूप का स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो उतना समय तो हम लोग भगवान के संपर्क में रहे उनके स्मरण के साथ। और जहां लिखा है ना तत्र प्रतिमा से कि उनकी प्रतिमा नहीं है, तो प्रतिमा का अर्थ ये भी बताते हैं वेदों में और अगले श्लोकों में कि भगवान के विग्रहों के जैसे नीति नीति शब्द भी इस्तेमाल किया अगर वेदों में कि ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है, तो उसका उद्देश्य ये है कि वो हमारे जैसे हाथ नहीं है, हमारे जैसे नेत्र नहीं है, चमड़े के जैसे, ये पांच तत्वों से बने नहीं, दिव्य हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग मेरा उपहास करते हैं जब मैं किस रूप में आता हूं, मनुष्य रूप में उतार लेते, मतलब मनुष्य की तरह दिखता हूं तो लोगों को लगता है हमारी तरह ये, तो मुझे अपनी तरह समझते हैं, भगवान को मूर्ख बताते हैं। और ये भी कहते हैं भगवान की नास्तिकों के लिए, मूर्खों के लिए तो मैं हमेशा अपनी माया शक्ति से आच्छादित रहता हूं, उनको दर्शन देता भी नहीं। तो इस प्रकार जो विग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है उससे हम जैसी कंडीशन सोल जो मन वाणी कर्म से केवल पाप करती है या कर्म करती है या पुण्य और कर्म मिक्स करती है, ऐसे लोगों को जो विग्रह प्राप्त होते हैं प्रमाणिक गुरु से संप्रदाय से निश्चय लेता है और विग्रहों की सेवा पूजा अर्चना में लगता है, तो वो उतना अधिक क्या होता है भगवान की सेवा में लगकर शुद्ध होता जाता है। तो विग्रहों का ये हम बता सकते हैं लोगों को, हमें मालूम होना चाहिए। और फिर और क्या चीजें बोलते हैं, और कैसी मूवीज आ रही हैं, और क्या क्या पूछते हैं,
अमेरिका।
उस दिन हमारे मंदिर में अमोघ लीला प्रभु आए थे, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इस पॉइंट पे बोला था कि भाई अगर इतनी बड़ी संस्था इस्कॉन विदेशों में पैसा भेजती है, तो उन्होंने कई चीजें बोली कि ठीक है अगर किसी को ऐसा लगता है, तो कहते पहली बात तो ये है कि अगर इस्कॉन को बाहर विदेशों में पैसा भेजना था तो इनको सबसे पहले मंदिर भारत में बनाने चाहिए थे, अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं बनाने चाहिए, सारे मंदिर तो पहले विदेशों में बनाए, ठीक है कि नहीं, आखिरी में भारत में क्यों बनाए। तो इससे क्या बोले, भारत भारत विदेशों से अंदर आता था क्या। फिर दूसरा कि जहां भी मंदिरों का निर्माण किया वो प्रभुपाद जी या यहां के लोग ना बड़े बुद्धिमान नहीं थे, इन्होंने मंदिरों का निर्माण ऐसी जगह किया जहां कोई जानते नहीं, इनको तो वहां करना चाहिए था जो बड़ा ही धार्मिक धाम की जैसी जगह है जहां दुनिया आती है। जैसे सबसे पहला इस्कॉन का सबसे ज्यादा इंडिया के लोग धार्मिक स्थल में कहां जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो इनको वैष्णो देवी खोलना चाहिए था मंदिर। ये ना मैनेजमेंट ठीक नहीं है इन लोगों का, कोई पता नहीं कौन चला रहा है, पैसा बाहर भेजना है तो मंदिर कहां बनाना चाहिए पहला वैष्णो देवी, दूसरा बनाना चाहिए अमरनाथ है ना, तीसरा बनाना चाहिए खाटू श्याम, चौथा बनाना चाहिए साईं बाबा के यहां शिरडी। क्या है इस्कॉन के लोग, समझदार नहीं, पढ़े लिखे तो बताएं इसमें बहुत है, लेकिन अगर पैसे भेजना ही है तो इन जगहों पर अगर मंदिर बनाते और बड़े बड़े हुंडी बॉक्स रखते तो क्या होता, पैसा ज्यादा आता है ना। तो इन्होंने ठीक नहीं है इनका मैनेज। फिर इन्होंने एक बात बोली कि अगर इनको पैसा भारी भेजना था, मंदिर का निर्माण चलो ठीक है कर दिया, चलो जहां जगह मिली कर दिया, तो इन्होंने दूसरी संस्थाओं की तरह सारे के सारे मंदिर कब्जे क्यों नहीं करे, क्यों खरीदने पड़े। आपने लगा देखा कभी कोई संस्था किसी मंदिर वालों ने या गुरुद्वारे वालों ने या اسلامک ڈیووٹیز نے کہیں پر کوئی جگہ خرید لیا, ہو سکتا ہے کچھ ایکسپشن کیسز ہوں, بٹ زیادہ تر کیسے بنتے ہیں ان کے مندر مسجد؟ قبضہ کر کے, جھنڈا گاڑ کے, آج سے یہ ہماری ہوگی جگہ. اس کون والے بڑے پاگل لوگ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, پہلے زمین ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں, چاہے کتنی کروڑ کی لینی پڑتی ہے لیتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں اس میں ملتے ہیں. اور پھر یہ لوگ اتنے اس لیے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا. مندر تو ہونے چاہیے تھے 500 انڈیا میں, انہوں نے 500 تو بنائے پہلے باہر, اور یہاں بنائے 50-800 مندر, اب بنا رہے ہو بھی, تو یہ بھی بڑی غلطی چیز ہے ان کا. پھر ان کا دماغ اور بھی خراب ہے, ایک نئے بھگوان انٹروڈیوس کرتے جن کو مانتے نہیں کوئی, جو کوئی جانتے نہیں, فیمس ہی نہیں ہے, کون؟ چیتنیہ مہاپرو. کوئی جانتا ہے ان کے سامنے ڈونیشن واسطے کوئی پیسے ڈالے گا؟ جو جانتے نہیں کون کون ہے, کون ڈالے گا ان کے آگے؟ تو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے. ان کو تو کیا کرنا چاہیے تھا, جہاں بھی مندر کھولو وہاں پر پھر ساری کی ساری مورتیاں رکھنی چاہیے تھی, شیو جی کی بھی رکھنی چاہیے تھی, ماتا رانی کی بھی رکھنی چاہیے تھی, اور سائیں تو بڑے فیمس چل رہے ہیں وہ بھی رکھنی چاہیے تھی, مطلب کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اگر واسطہ میں ان کا ادیشیہ ہے باہر پیسہ بھیجنا ہے تو یہ سب کرنا چاہیے تھا. اور پھر اتنا ہی نہیں, یہ لوگ اچھے اچھے لوگ بھی ہائر کر سکتے تھے اس چیز کے لیے, ایک سیلس اینڈ پروموشن کمپنی بھی کھول سکتے تھے ان سب چیزوں کے لیے. یہاں تو دیکھا جاتا ہے لوگ پیسے دینے کی جگہ اپنا جیون ہی دے رہے تھے, ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو مینجمنٹ نہیں آتا. مطلب اگر لوگ یہ بول رہے ہیں کہ پیسہ باہر جاتا ہے, پھر کیا ہونا چاہیے تھا, ان کو اس پلاننگ سے کام کرنا چاہیے تھا. اور پھر جن لوگوں نے اس موومنٹ کو جوائن کیا, کہ وہ اتنے پاگل ہیں, اپنی بڑی بڑی کمپنیز چھوڑ کر, اچھے اچھے پریواروں کو چھوڑ کر, اتنا بڑا تیاگ کر کر, برہمچاریہ کا پالن کر رہے ہیں, پورا جیون سمرپت کر کے بھکت لوگ یہاں سیوا کر رہے ہیں, اور وہ اپنا جیون ایسی چیز کے لیے سمرپت کریں گے کہ جہاں سے جس انسٹیٹیوشن میں وہ لوگ ہیں کہ وہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہو, تو پھر تو ان کو کیا کرنا چاہیے, جہاں پیسہ باہر جا رہا ہے وہیں چلے جانا چاہیے, ہے نا. ایسا بھی نہیں کوئی ایجنٹ وہاں بیٹھا ہوئی تو پیسہ اکٹھا کرتا رہے, میرا بھی مکان لے لے تو اپنا بھی لے. آج اس دیش میں کوئی نیتا بنتا ہے اور کوئی تھوڑا سا ایماندار دکھ جائے تو سارے ٹی وی چینل اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نامانکن بھرا, ان کے پاس کیول 1 کروڑ کی سمپتی بس, اور یہاں کے بھکتوں کی سمپتی کیا ہے, بینک اکاؤنٹ ہی نہیں جو رہ رہے ہیں مندر میں, تو نہیں کہاں چھپا کے رکھتے. اور اس پرکار جو اپنے پڑھے لکھے لوگ اپنے جیون سمرپت کر رہے ہیں, تو ان کو پھر کسی اور جگہ کرنا چاہیے تھا, کون میں نہیں کرنا چاہیے. تو اس پرکار جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہاں کا دھن باہر بھیجا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ایرشا کرتے ہیں اس کون کی سفلتا سے, نمبر ایک جیلس ایرشالو ہے, دوسرا جو ڈونیشن نہیں دینا چاہتے, منع کرنے کا ایک کیا چاہیے, بہانا چاہیے. ہمیں یاد ہے کچھ سمے پہلے یہی لوگ جب ان سے ڈونیشن مانگتے تھے کہ بھائی فیسٹیول ہے کچھ کریے نا, کہتے ہیں تم لوگوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے تو ودیشوں میں اتنے مندر ہیں وہاں سے خوب پیسہ آتا ہوگا تمہیں, اس کون تو اتنی بڑی سنستھا ہے, ودیشوں میں اتنے مندر ہیں تمہارے, بہت پیسہ آتا ہوگا وہاں سے, ہم سے کیوں لے رہے ہو؟ تو اپنے کو بچانے کے لیے کیا بولتے تھے, آتا ہے. ابھی جب بولتے مانگنے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, جاتا ہے, مطلب دینا نہیں چاہتے, کنجوس نمبر ون ہے. اور اس وجہ سے وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے سے مانگو تو میری جواب دو پہلے بس میری بات کا. تو اس پرکار جو لوگ ہیں وہ ایرشا رکھتے ہیں, دویش رکھتے ہیں, یا دینا نہیں چاہتے یا ہوتے نہیں ہیں, وٹ ایور اٹ از, کئی ریزن ہیں. تو اس لیے اس پرکار کے کیا کرتے ہیں وہ, تو مطلب پھر کئی غلط پرچار دشپرچار چلتا ہے. جس ویکتی نے ایسا بول دیا اس نے بنا کسی سوچ سمجھ کے بول دیا, اور جس سنستھا کے لیے بولا وہ اسکون سے ایک الگ ڈیویٹ ٹیمپل ہے, اسکون بینگلور, تو وہ اسکون بینگلور ایک الگ سے مندر ہے. اس ویکتی نے اگر کچھ ایسا کیا بھی مان لیجیے, اس کی جانچ ہونی چاہیے, کرائیے. باقی سارے مندر اسکون کے, وہاں سے ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور ہر مندر اپنا انڈیپینڈنٹ اپنا خرچہ پانی چلاتا ہے, پبلکوں کی سیوا کرتا ہے, پرچار کاریہ کرتا ہے. تو یہ ہمیں بتانا چاہیے لوگوں, ہمیں خود بھی جانکاری ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو مندر وہ ہے اس میں کیس چل رہا ہے, کل کو واپس آ جائے گا, ہائی کورٹ میں جیت چکے. تو اگر اس نے کہیں سے کچھ ویکتی نے ویسا کچھ ادھر ادھر بھیجا بھی ہے, پہلے تو ہمیں نہیں معلوم, ہم ٹپنی نہیں کر سکتے, اگر بھیجا بھی ہے اس کی جانچ ہو, تو وہ کبھی نجی ہاتھ میں. یہ بھی بولتا, ہم یہ بھی بول رہے تھے کہ اگر پیسے ہی بھیجنا بزنس ہوتا تو اس سمے مندر کھولتے جس سمے لوگ زیادہ آتے ہیں, باقی ٹائم بند رکھتے ہیں, اور صبح 4:30 اٹھنے کی ضرورت کیا رہتی ہے لوگوں, ہے نا. تو کافی چیزیں سادھنا, چینٹنگ کی ضرورت تھی, کیوں ایسے نیم بنائے, اور ایسے نیم کیوں بنائے جن نیموں کو سن کر لوگ بھاگ جاتے ہیں. آئے گا کون مجھے بتاؤ نا آپ کے مندر میں. ہاں وہ یہ, آپ جو ہیں مانساہار بولو کہ جتنا کھانا کھاؤ لیکن یہاں ڈونیشن پیسے ڈالو, آپ بولو کرو نہیں جو مرضی ہو سم بند کرو لیکن آتے رہو یہاں پر, آپ بولو جتنی مرضی پیو, پی کے بھی آ سکتے, بورڈ لگاؤ نا کہ اگر آپ نے انڈا کھایا ہے, میٹ کھایا ہے, پی رکھی ہے تو بھی اس مندر میں آ سکتے ہیں, ہمارے دروازے پی کر بھی آئیے, نو پرابلم, لیکن ڈونیشن ڈالتے رہیے. ایسا بھی نہیں لکھا, کیوں ہم لوگ پرچار میں بولتے ہیں کہ ان سارے چیزوں سے دور رہیے, اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو پرچار کا سرکل ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ نہیں. سماج میں زیادہ لوگ نیم توڑنے والے ہیں یا نیم پالن کرنے والے ہیں؟ آج بھارت ڈسکو میں لمبی لمبی لائن لگی ہوئی ہے نا, ہر الٹی سیدھی جگہ میں, آپ سی پی چلے جاؤ, انڈیا گیٹ چلے جاؤ, بھرے پڑے ہیں لوگ. تو ہمیں بھی ایسا سسٹم رکھنا چاہیے نا, اتنے کٹھن کٹھن نیم بنا دیے اور پرچار کر رہے ہیں اور پیسے کی بات کر رہے ہیں. کیا اکاشی کی کیا ضرورت ہے, کیوں رکھوا رہے, کھاؤ جو مرضی کھاؤ. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا تیاگ ہے, کیا تپسیا ہے, دھرم کا کیسا پالن کر رہے ہیں, اور جو پیسہ ہے وہ کس پرکار اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا جاتا ہے کہ بھگوان کے سامنے صبح صبح جو ہم کلیکشن کرتے ہیں وہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کل کا بھگوان کی پرسنتا کے لیے بھکتوں نے اتنا کلیکشن کیا, اور مندروں کی اتنی صفائی رہتی ہے کہ دوسرے مندر والے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں لوگ جو آتے ہیں کہ یہاں پر صفائی زیادہ ہے, یہاں پر مینجمنٹ اچھا ہے, یہاں پر سیکورٹی سسٹم ہے, اپنے سے کیمرے لگا رکھے ہیں, اور بھگوان کا ورشپ اسٹائل بہت سندر ہے, بھگوان کا شنگار دیکھ کر جانے کا من نہیں کرتا ہے, اور صبح شام آپ کھچڑی بانٹتے ہیں لاکھوں لوگوں کو, ویسے آپ مڈ ڈے میلس میں کھلا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے فیسٹیول جو لوگ نہیں کر پاتے اسکون میں, اتنا بڑا فیسٹیول کرتے ہیں جنماشٹمی کا, دوسرے فیسٹیولس ہر بھگوان کے وشنو اوتار کے سارے فیسٹیول آپ کرتے ہو, اس کے علاوہ پرساد میں خالی دھنیا نہیں دیتے ہیں آپ, 10-10 آئٹم کا فیش کھلاتے, ہزاروں لاکھوں لوگ آپ پیٹ بھرتے. تو ان سب چیزوں میں ہمارا استعمال ہوتا ہے سارا, اور ان سب میں خرچہ بھی ہوتا ہے, اور اس پرکار ہم لوگ مندر کے لیے پرچار کے لیے ان سب کاریوں کا استعمال کرتے ہیں. مجھے بتانا چاہیے کہ یہ اسکون کے نام سے رجسٹرڈ ہے, اور کیا کہتے ہیں, اگر ہم لوگ الگ الگ کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ساری اینٹیٹیز کو الگ الگ رپورٹ جمع کرانی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں, ایک الگ اینٹیٹی ہوگی, ان کو اپنا رجسٹریشن الگ چاہیے, انکم ٹیکس نمبر الگ چاہیے, ہر چیز الگ چاہیے, الگ بیلنس شیٹ بنانی پڑے گی. تو یہ سوسائٹی یا ٹرسٹ ہے جس کو جس نام سے رجسٹر کیا اسکون کے نام سے انتراشٹری, ہاں ہاں, اور ہمارا ساری برانچز नाम वैसे लिखती है लेकिन चेक पे इस्कॉन लिखती है ताकि वहां सबकी जो ब्रांच बैलेंस शीट है वो सारी बॉम्बे जाए, फिर वहां से क्लब होकर फिर वो बॉम्बे से रजिस्टर उसमें जाती है इनकम टैक्स में। तो इसके पीछे उद्देश्य और जो आपको हम स्लिप देते हैं उस स्लिप में लिखा होता है कि आपका पैसा कहाँ गया, इस्कॉन रोहिणी की स्लिप कटी है, इस्कॉन बॉम्बे की कटी है, कहाँ की कटी है, तो ये उनके बैंक अकाउंट नंबर में जाती है जो कि गलत बैंक अकाउंट नंबर हर एक का पर्सनल होता है हर एक सोसाइटी मंदिर। और कौन सी मूवी में क्या
किसी का बैंगलोर के नाम से ना ट्रांसफर भी करे उस बाहर ट्रांसफर करे तो हमारे पास मेन ना वो अजय अवेयरनेस के उनको फर्क रहना चाहिए कि इसको बैंगलोर में और इसमें क्या फर्क है। तो मैंने उसको भी बताया, मैंने उसके बाद आपका नाम वी के गुप्ता, अगर मैं ए वी के गोयल लिख दूं और मैं कुछ भी करता हूं तो नाम तो लोग आपको जानते, आप ही का नाम आएगा ना, उसमें फर्क कैसे आएगा, आप तो कहोगे मैंने कुछ करा नहीं है। तो सबसे वो रियलिटी में ये भी है कि इसकॉन बैंगलोर ट्रांसफर कर भी रहा है क्योंकि उसने किसी नया मूर्ति ऑपरेट कर ली है और वो ट्रांसफर कर भी है। तो मैंने उसको भी समझाया फर्क है दोनों में एंटिटीज में,
एक वीडियो भी बना हुआ है तो वो भी दिखा
इस्कॉन
ने रजिस्टर वीडियो बनाया उसके जवाब देने के लिए जी चार चार साढ़े चार मिनट का नहीं नहीं वो नहीं साढ़े चार मिनट का इस्कॉन ने जो बनाया।
तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दोनों में फर्क है।
ठीक है, तो हमारा उद्देश्य था ये कहने का बताने का कि जो इस तरह की मूवीज चल रही हैं, इस तरह की जो फिल्में चल रही हैं, उसमें जो प्रश्न किए जा रहे हैं हमारे डिवोटीज को सब में क्या होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि जवाब क्या है ताकि हम लोग उनके जवाब दें। तो आपने जो प्रश्न किए बोले, इसके अलावा दूसरे कोई प्रश्न है जो किसी को लगता है कि इसको लोग बोलते हैं कि लोग इसको वाले ब्रेन वॉश करते हैं, कृपा से भी बोलते थे जब कृपा जी अमेरिका में थे और नए नए यंग लड़के और लड़कियां उनको ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि भाई आप तो ब्रेन वॉश करते हो। कृपा ने कहा यस वी वॉश ब्रेन फ्रॉम कंटेमिनेशन, तुम सबके दिमाग जो मटीरियलिज्म से सेंस एंजॉयमेंट से और इन सबसे जो दूषित हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं और लोगों को यह बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति नहीं है पशुओं की तरह, जीवन का लक्ष्य का जीवन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना हमेशा आनंद में रहना और जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। तो जब हम ये भगवत ज्ञान जो सारे ग्रंथों में दिया है लोगों को देते हैं समझाते हैं और क्योंकि हम पूरी पवित्रता के साथ इसका पालन कर रहे हैं और लोग भी इसको करते हैं, जिन लोगों को ये पता चल जाता है तो करते हैं, और जो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कुछ लोग मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि एक उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, दूसरा जो भी उसकी भक्ति थी, दूसरा उसका उसकी रुचि भगवान की भगवत की भक्ति की भक्ति, और तीसरा अब समस्या ये हो चुकी है कि 50-60 सालों में जमाना इतना बदल गया है कि सबका उद्देश्य सेंस एंजॉयमेंट है पैसा है। तो जो 50-60-70 साल से ये सीख रहा है कि जीवन का लक्ष्य पैसा, जीवन का लक्ष्य पैसा, जीवन का लक्ष्य पैसा, तो अचानक उस समाज में से कुछ लोग शास्त्रों का अध्ययन कर समझ कर सीख कर ये पता लगाते हैं अरे जीवन का लक्ष्य पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाने वाले भी दुखी रहते हैं और उस पैसे को जो एंजॉयमेंट करते हैं उससे पाप होते हैं, पाप करने वाला व्यक्ति नरक जाता है, तो क्या फायदा इसका। तो हमारे पास उतना होना चाहिए जितना हम लोग जीवन यापन कर सकें, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें और बाकी समय उसमें लगाएं जो कि। तो कई बार जब लोग इस तरह बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 50-60 सालों में या अपने परिवारों में कहीं पर भी इस तरह की चीजें नहीं देखी, वो जब कोई दिख जाता है कि कोई भक्ति कर रहा है फिर उनको इनसिक्योरिटी होती है भाई ये तो चला जाएगा धाम, इसका लड़का तो जाएगा जाएगा, कोई इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है और हम रह जाएंगे, तो फिर वो दुष्प्रचार शुरू करते हैं। भक्ति इसे थोड़ी कहते हैं, भक्ति तो घर से भी हो जाती है, फिर वो भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं और उसमें ऐसे उदाहरण ढूंढते हैं जिसमें लोगों ने घर से भक्ति की है, اور ترک یہ دیتے دیکھو انہوں نے تو گھر سے کی تھی یہ بھی چلے گئے ہے نا, تم کیوں الگ سے باہر جا رہے ہو, تم کیوں اتنا جانتے ہو. آج مجھے کسی ویکتی نے بولا کہ پربھو جی ہم کسی کے پاس گئے ڈونر کے پاس, تو انہوں نے کیا کیا, وہ ڈونر نے ابھی ابھی جو یہ ایک مندر بن رہا ہے وندان میں جس میں اسکون کا بھی نام لیتے ہیں, وہ کروڑ کروڑ روپے کی وہ لے رہے, وہ اسکون بینگلور والوں کے جو اسکون کا, تو بولتے ہیں تاکہ ان کو مل جائے کچھ, تو اتنے بڑے بڑے دھن لوگ آرام سے دے رہے ہیں ان کو, اور ہم صبح سے شام تک جاتے ہیں ایک پانڈا اور ایک لائف ممبر ویکتی کتنی جلد و جہد کر کے 50% کر کے تمہارا پیسہ یہاں جا رہا ہے یہ ہے اور وہ ہے, یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا, اتنا کنوینس کرنے کے بعد ان سے پیسہ لیتے, اور ان کا ایک آدمی آتا وہ جو کہ پہلی بات تو آتھرائز لوگ بھی نہیں, لیکن وہ آتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں اور وہ ایک ایک کروڑ کی ان کو ممبرشپ دے رہے دے رہے ہیں وہاں پر. تو پھر مجھے لگا کہ کلیگ میں ادھرم کے پرتی لوگوں کی روچی زیادہ ہوتی ہے, ادھرم سے لوگ جلدی آکرشت ہوتے ہیں, ادھرم میں جلدی پیسہ لگتا ہے کیونکہ ادھرم سے کمایا ہے. تو دھرم جیسے مایا پور چندرودے مندر جو بن رہا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس نہیں جا رہے, یہ وہ لوگ بھی ایسے جنرل لوگوں کو اپروچ نہیں کر رہے, انہوں نے کہا یہ چیتنیہ مہا پربھو کا مندر بن رہا ہے, اور چیتنیہ مہا پربھو کے مندر کو بنانے کے لیے ہمیں کسی میٹ ایٹر کوئی الٹے سیدھے کام کرنے کا نمبر دو کا پیسہ نہیں چاہیے. چیتنیہ مہا پربھو کا مندر بن رہا ہے جو کہ پریڈکٹڈ ہے, نتیانند پربھو نے بولا تھا کہ یہاں پر بھویہ مندر ہوگا جیو گوسوامی کو, جسے پورے وشو میں جو ہے کرشن بھکتی کا پرچار پھیلے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مندر جو ہیں ان بھکتوں کے دو نمبر کے پیسے سے نہیں بننا چاہیے, اس میں تو بھکتوں کو اپنی گاڑی خون پسینے کی کمائی دینی چاہیے, اور وہ بھکتوں سے ہی اکٹھا کر رہے ہیں زیادہ تر, ان کا ادیش یہی ہے تاکہ بھگوان کا مندر بھگوان کے بھکت بنے. لیکن ہمارے ان شہروں میں تو بھکت ہوتا ہی نہیں, اس لیے ہمیں اب بھکتوں سے بھی لینا پڑتا ہے, اس لیے بھگوان کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا پیسہ میں لگاؤں گا تو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی, اس کے پاپ ختم کرنے پڑیں گے, اس کو دھام بلانا پڑے گا. نمبر ایک کا چور اٹھائی گرا الٹے سیدھے جیون کے کام کیے اس نے, اس کا پیسہ لگ جائے گا میرے مندر میں تو مجھے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. تو تھوڑی تھوڑی لیتے چل, اس سے اتنا مطلب 20,000 مان جائے چل, اتنے دے گا وہ, اب جتنے مجھے ہاتھ جوڑ لوں. جس کے سکرتی ہیں جس کے پڑھنے ہیں بھگوان اسے لیں گے نا, کہ ہاں اس کی میں کر سکتا ہوں, اس نے تھوڑا بہت کیا ہے, یہ اچھا ویکتی ہے. تو اس پرکار ابھی 300 کروڑ کا رتھ تروپتی مندر میں کسی نے دان دیا سونے کا, کتنے کا؟ گولڈ کا ہے. تو کرنے والے کرتے ہیں. گولوک دھام جانا اتنا آسان نہیں ہے نا, بتا رہے ہیں اگر ساری بھیڑ گولوک ہی پہنچ گئی, ایرا گہرا مطلب کہہ رہا گولوک پہنچا ہوا لائن میں کھڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا, تو شنکر جی کا بھی کام ہے یہاں پر, ان کو بھی مایا وا سلانا پڑتا ہے, تو اتنی ساری سنستھائیں بن رہی ہیں, یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, کارن کا یہ بھی ہے کہ کلیگ ہے, اور کلیگ میں دوش ایرشا لڑائی جھگڑے کرا کے رکھنے, دو نمبر کے سارے پیسے, کوئی بھی ویکتی کہاں ایماندار سے کہاں کما پا رہے, ہر ویکتی دو نمبر کا کام کر رہے. تو بیچارے جو بھکت مالا کرتے ہیں, نیموں کا پالن کرتے ہیں, بھگوان چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی سیوا خود اچھے, پھر بھی اگر نہیں بھی ہے چلو کسی سے آپ بیچارے کی زیادہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو کچھ ٹائم لگے گا, کیونکہ دان دینے سے ویکتی کے پنیہ جاگرت ہوتے ہیں, بھکتی اور بھگوان کے مندر میں لگنے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو, بھگوان کو ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے نا اس لوگوں کو, اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کرشن بھکتی, یہ ہر کوئی نہیں آئے گا یار وغیرہ کہ ہر کوئی آ جائے گا, اتنا آسان نہیں ہے.
ایک میرے کو کسی نے کہا کہ اسکون میں بھی پیسہ
ایک تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا اور نہ ہمیں کوئی بتاتا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, हमारा उद्देश्य है कि हर एक को अपॉर्चुनिटी दे दें, क्योंकि महाप्रभु ने बोला है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें मालूम है कि अगर कृष्ण का उपदेश नहीं सुनेगा धन लगा सकते तो हम प्रयास करते, हम जबरदस्ती किसी करते नहीं। आज नहीं तो उसका भला हो जाएगा। जनरली जो करता है, जैसे हम लोग गीता मैराथन में जाते हैं, लोगों से गीता दान करवाते हैं, पैसे किसी ने दिए, कमाए कैसे, गीता ली उसने बांटी नहीं, किसी और से बंटवा दी, पढ़ी किसी ने, भक्त कौन बना, जीवन का फायदा किसका हो रहा है, तो माध्यम वो भी बना। तो बताते हैं उसका 16th भाग या 1/6 भाग उसको मिलता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी सुकृतियां बढ़ती हैं तो वो आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान ने भगवदगीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कर्म एव, कि भाई किसी भी व्यक्ति को दान तपस्या और यज्ञ त्यागने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, पावनानी मनुष्य, मनुष्य को पावन करते हैं ये चीज। क्या क्या? तपस्या। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना 4:30 बजे, शरीर की तपस्या है वो, है ना, जप करना बैठकर भक्तों के साथ, कितनी बड़ी तपस्या है। इसके साथ जप करूं वो, पहले तो उठना ही बड़ा मुश्किल है और फिर जप करना बड़ा मुश्किल है, भागवतम क्लास में हमें और भागना पड़ता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं शरीर से, तो तपस्या से क्या होता है, हमारा एक तो धर्म का नियम पालन हुआ है, तपस्या से शुद्धिकरण होता है, प्योरिटी बहुत तेजी से आती है आपकी वाणी में, आपके शरीर में, आपकी शुद्धता से, पवित्रता से लोग आपसे आकर्षित होते हैं, ना कि मैनिपुलेशन से, फिर आप पवित्र करते हैं लोग। यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये यज्ञ है कलयुग का। भक्त लोग यज्ञ करते हरि नाम संकीर्तन यज्ञ और दान। जो व्यक्ति भी अर्जन करता है धन कमाता है उसे दान करना चाहिए। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी इसका भरण पोषण करता है, वो इनको पालने के लिए बने, तो उसे ये सब चीजें नहीं त्याग करनी चाहिए। अगर कोई त्याग करता है या नहीं करता है इस चीज को, तो हर एक चीज का रिएक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन हमारे साथ। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कुछ गलत करते हैं तो हम देखते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है कि हमारी वो बढ़ जाती है हिम्मत। फिर हम दूसरा गलत करते हैं उससे थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ी और हिम्मत बढ़ती है। पहले में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी फिर अगली बार हिम्मत और बढ़ती है, तो ये हिम्मत बढ़ रही है बार बार, और फिर तीसरी चौथी की बात तो आदत बन जाती है वो। आप कहाँ भगवान, नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें, तो वो एक आदत बन जाती है। अच्छा, इस बीच में उसके रिएक्शन भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रिएक्शन आता है वो चिट्ठी लेकर नहीं आता, जो आपने 19 मार्च को 7 बजे ये गलत काम किया था ये रिएक्शन उसका है, ऐसा नहीं आता है। अगर ऐसा फेस दिया भगवान ने तो कोई और इतनी देर बाद आ रहा है, तो अभी तो इतने बचे में, तो रिएक्शन जब आता है वो आता जरूर है। तो होता क्या है, व्यक्ति कहता नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता। अच्छा, सोचता है एक बारी क्या क्या किया था, चिंतन करता है एक बारी, लेकिन कहते नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, ये तो बस पता क्यों हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने ये खा लिया था, है ना, ये मैंने ऐसा कर दिया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। एक्चुअली डॉक्टर ने भी यही बताया है, ये मेरे पाप का फल नहीं है। फिर थोड़ा और दूसरा आता है, फिर वो कहता है यार बार बार आ रहा है, तो वो माफी मांगते हैं कि वहां चलो चलो मैंने किया उसके लिए माफ कर दो, वहां कहते दोबारा तो नहीं करेगा, मेरा हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जैसे उस दुख से निवृत्त होता है तो कहता है एक्चुअली ये ठीक इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सही टाइम पे उस डॉक्टर के पास चला गया, और मैं तो उसके पास नहीं जाता क्योंकि मेरा दोस्त दूसरा बोल रहा था उसके पास जाओ, उसके पास तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो सही समय पे डिसीजन किसने लिया, मैंने लिया, और मैं उसके पास गया तब मेरा ठीक हुआ। एक्चुअली तो बीमारी थी प्रॉब्लम, बाकी फिर जब कम करने की बात आती फिर कहता अच्छा मेरी आदत क्या बनी हुई थी ये करने की, मैं ये कर पाऊंगा, तो कंटिन्यू करता था चीज। तो जो आदत बन जाती है, जो कर्मों में आ जाती है चीज, उसका रिएक्शन उतना ही है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने अच्छे काम भी तो किए हैं भगवान, ये बराबर कर दो ना, नहीं वो नहीं है। तो इसलिए हमको अगर पावन होना है, पावनानी मनीषिणा, मतलब क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो हम ही जानते हैं, हम पूरा नहीं जानते बट ऊपर तो रिकॉर्ड हो रहा है, जीबी की जीबी में भर रही है, तो वो सारी चीज रिकॉर्डेड है। अभी किसी ने एक वीडियो भेजा था, कार्टून टाइप का था बट नरकों का था, किस प्रकार किस किस नरक में जाकर व्यक्ति को कैसी कैसी यातनाएं मिलती है, उसको वहां एलसीडी लगा हुआ था नरक में पहुंचने के बाद, वो एलसीडी में देख रहा हूँ। हाँ मैंने ये क्या था, हाँ ये देखा होगा मेरा वीडियो यूट्यूब से चल रहा थी। हाँ जी अच्छा था, नहीं मैं उसमें दिखा रहा हूँ, तो उसमें दिखा रहे हैं वो यहाँ से फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, डालने से पहले उसको दिखा रहे हैं इसकी सजा मिल रही तेरे को, तूने ये किया था ना पैसे छीने थे, अच्छा ये किया था तूने, ये किया था इसकी हर एक चीज की, तो शास्त्र के हिसाब से बनी है वो। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान लेकिन कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन शरण का मतलब समझना पड़ेगा। शरण का मतलब ये नहीं है कि मैं तो मंदिर आता हूँ रोज जी, मैंने तो ये सेवा कर दी, और फिर हमारा जो पाप किए थे वास्तव में भगवान शरण पे आने में माफ तो कर देते हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है कि हम जो सातवां नाम अपराध है, क्या है वो
नाम
नाम के बल पर पाप करना, ये अपराध गिना जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम है कि भगवान के नामों को जपने से, उनकी शरण लेने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, कन्विक्शन है, और 100% खत्म हो जाते हैं आपका अगर कन्विक्शन है। लेकिन अगर हम फिर से गलती करते हैं कि भगवान के नाम तो पवित्र है ना, तो फिर वो फिर पाप नहीं कहलाता, वो नाम अपराध कहलाता, और नाम अपराध का मतलब हुआ कि अब आप जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं उन जप को करते हुए आपको कुछ सुफृति नहीं होगी, आपका हृदय पवित्र नहीं हो रहा उससे, आपको भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं से वंचित कर दिया जाएगा, और आपके मन में जो इच्छाएं हैं नाम लेने से वो पूरी होती जाएंगी, तो भक्ति नहीं मिलेगी, धाम नहीं मिलेगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। पर नाम अपराध की सजा तो यमराज भी नहीं देते, कौन यमराज नहीं देते, क्योंकि हम कृष्ण के नाम के प्रति अपराध किया है, तो स्वयं कृष्ण जो फाइल अपने पास मंगाई थी उस फाइल के अकॉर्डिंगली खुद देते हैं। हो सकता है कि पाप करने से तो हमें 10 बार नरक भेजा जाता, लेकिन अगर फाइल कृष्ण के पास आ गई है तो हो सकता है 1000 जन्मों के लिए भेज दे अपराध, हो सकता है जन्मों जन्मों के लिए भेज, और हो सकता है जल्दी भी ठीक कर दे। ये सिंसियरिटी पे, यस मैं ठीक होना चाह रहा था, प्रयास कर रहा था, प्रयास सिर्फ सिंसियर होने चाहिए एफर्ट्स, क्योंकि रिएक्शन जो है ना हमारे साथ, हमने बताया ना आदत क्या है हमारी कि हमें रिएक्शन हमारे कर्मों का फल नहीं लगता, हमें लगता है कि भाई यूं ही हो गया, मौसम खराब था इसलिए ऐसा, चाहे परिवार में और किसी को भी होगा, मानसिक दुख तो आप मान लो आपके किसी बेटे को हो गया तो आपको नहीं होगा, मानसिक तनाव में तो आप भी रहोगे, तुम आपको मानसिक तनाव मिलेगा, दुख तकलीफें मिलेंगी, ये सब होता है। तो इसलिए जो 3 चीजें बताई कि किसी को नहीं त्यागना चाहिए उसमें क्या क्या है, तो दान, दान में जो लोग अर्निंग करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे हमारे मंदिर में एक लेडी है कमलेश माता जी, वो सफाई करती है और वो चाहते भी नहीं कि मिले, बट फिर भी उसको कुछ देते हैं, मतलब 1000 रुपए देते हैं, तो उसमें से वो 200 रुपए की पर्ची कटा लेती है, 100-200 रुपए उसी में पर्ची कटाती है, आपको बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी है, लेकिन उसका हृदय तो देख रहे हैं भगवान। जैसे मैंने बताया कि एक कूड़े वाला जो आता था पंजाबी बाग में, हाँ 10-20 रुपए डालता था, कमाता कितना, 40 रुपए पूरे दिन में। आज से 15-13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब तो 10 नोट की वैल्यू थी, 50 के बराबर था, तो वो जो बेचकर आता था प्लास्टिक कपड़ा जो भी था, शाम को मंदिर सफाई करता था और फिर अपने यहां से निकल के 10-5 रुपए भगवान के मंदिर में डालता था। अब मुझे बताइए, जब मुझको देखने में अच्छा लग रहा है और जिसके लिए वो कर रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा, تو ایسا دانی ایک بہت بڑے دانی جو کہ اتنا کمانے کے بعد اتنا دیتا ہے اس میں بھی نام تختی لگواتا ہے, اور ایک ویکتی جو اتنا ہی کماتا ہے اور اس میں بھی اتنا دیتا ہے تو وہ بھی چھپ کر جاتا ہے, چھپ کر دیتا ہے. ایکسٹرنلی وہ بے شک کے لگتا ہوئے آ رہی ہے لیکن انٹرنلی بھگوان سے بڑا پیار, من کا سنتوش ہے, انسیکیورٹی نہیں ہے. انسیکیورٹی مطلب کوئی ڈر نہیں, بھائی نہیں ہے. یہ ہو جائے گا کیونکہ جو ویسے غلط کرتا ہے اس کو ہمیشہ بھائی بنا رہتا ہے, وہ سکھ سے جی نہیں سکتا. اس کو کوئی بولتے نہیں پہنچے آپ کو بلایا ہے, مجھے کیوں بلایا ہے, وہ پریشان ہو جائے گا. ہاں تو نربھے جیون جی, بھگوان نے کہا میرے چرن کملوں کو پراپت کرو, ابھے چرنارویند. جیسے من بھگوان کے چرن کملوں کا آشرے گرہن کرتا ہے ویکتی سب سے پہلے نڈر ہو جائے, ابھے ہو جاتا ہے, اس کو مل جاتا ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ میرا کرے گا بھی کیا, یہ شریر کا بھی کچھ کرے گا تو شریر کہاں ہے, کس کا ہے, بھگوان کا شریر نہیں. تو نربھیتا آ جاتی ہے, اور جو ویکتی اس طرح نہیں ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ڈر بنا رہتا ہے, ڈر بنا, روٹی بھی ڈر کے کھائے گا, سوئے گا بھی ڈرتا سمجھ میں, ہر چیز کے ساتھ ڈر. اور پھر کچھ بھی گھٹنا گھٹے گی اس کو لگے اس کا ہو گیا, اس کی وجہ سے ہو گیا شاید, کی اور عادت بن چکی ہے. تو اس پرکار ہوگا کچھ بھی نہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اتنا غریب آدمی دان ڈال کر جیون جی سکتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس تو بھگوان کی کرپا سے سب کچھ ہے. اور بھکتوں کے سماج میں ویسے بھی کسی کی چنتا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بھگوان بھگوت گیتا میں کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہارا سب دیکھوں گا. جب ہم لوگ خود کرتا بن جاتے ہیں نا, کرتا مطلب ارے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, اس مان میں بولتے تھے ہم لوگ جو جوائن کرتے ہیں نا, پربھو اچھے اچھوں کو دیکھ لیا, کوئی 35 سال میں گیا, کوئی 40 سال میں اس نے مکان بنا لیا, اس نے یہ کر لیا, اس نے اتنا کما لیا, اس کون سے ہے نا, اور اس نے اس عمر میں جا کے شادی کر لی, اس نے یہ کر لیا. بلکہ کوئی پوچھے گا نہیں, مندر میں بھی دوائی کے لیے بھی بل پاس بھی کرے ہوں گے, یہ ہوگا, ڈراتے تھے لوگ ایسے, چوری کا الزام یہ بھی بولا ہوں گا, چوری کا الزام لگائیں گے آپ پر, یہ الزام لگیں گے, بڑے دقتیں آئیں گی. تو ہمیں تیار کیا گیا بھیا, یہاں تو ہونا ہی ہونا ہے خوب, مطلب اس سے اچھی جگہ نہیں ہے ہمارے کو ہمبل بنانے کے لیے, اس کون سے اچھی جگہ کہیں نہیں ملے گی. تو یہ سب ہوگا لیکن اگر ہم بھگوان پر آشرت ہیں, اگر ہم بھگوان پر سمرپت ہیں, تو پھر بھگوان کی وہ جو 9:22 کا شلوک ہے, اننیہ چنتے انتو مام یہ جنا پری اپاستے تیشام نتیہ بھکتاں ہم یوگ کشیم ابھیہم. ہم بھگوان کہتے ہیں میں وہن کرتا ہوں اپنے بھکتوں کے دکھ درد سمسیائیں, میں سوئم ان کی رکشا کرتا ہوں. اگر اس بات میں ہمیں وشواس نہیں ہے تو پھر باقی چیز پہ کس پہ وشواس کرو گے؟ بھکتی تو وشواس کے وہ ہے نا جی. اگر آپ کو بھگوان کی بات پر وشواس نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو کس پہ وشواس ہے؟ اپنے پہ وشواس نہیں, اور اپنے بل اپنے کاریہ اپنی شکتی پر اپنی بدھی پر اپنی کریاؤں پر وشواس ہے کہ میں خود کروں گا جی, مجھے خود ہی کرنا ہوگا, کوئی نہیں آئے گا اینڈ میں, میں ایسے کر لیتا ہوں, میں ویسے کر لیتا ہوں, میں اس کو یہ بول دیتا ہوں, ایسا کر لیتا ہوں جب تک. تو یہ سب بیکار کی چیز, اس کا مطلب ہم اپنے پہ وشواس کر رہے ہیں, کرتا ہم اتنی منتے, ہم اپنے کو کرتا سمجھ رہے ہیں. بھگوان کہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, نپٹ مورکھ دیو کیا بولتے ہیں شلوک کون سا, وہ اہنکار ومڑ آتما بولا اس کو, دیو کو نمبر بنا ومڑ آتما, کیونکہ وہ اپنے کو کرتا سمجھ رہا ہے, مطلب ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ, وہ میرے پہ آشرت ہی نہیں, وہ اپنی کلا پر اپنی ایکسپرٹیز پر اپنی بول چال پر اپنے قد گاٹھی پر اپنے ویکتتو پر اپنے اہنکار کے آدھار پر سوچ رہا میں یہ کر لوں گا, میں پھر یہ کر لوں گا, پھر میں اتنا کر لوں گا, پھر میں ایسا کر لوں گا, پھر میری یہ پلاننگ ہے, پھر میں ایسا کروں گا. تو یہ تو بھکت کا لکشن ہی نہیں ہے, تو اصل کا لکشن ہے 16 دھیان. تو اس لیے بولتے ہیں پاو نانی منش, اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور بھگوان پہ ہمیشہ سمرپت رہتے ہیں تو ہمارے کو ہمارے ہمیشہ رکشا ہے. اور جو شلوک ہم بتا رہے تھے یہ آج کل کے جو انسیڈنٹ ہے, آنے والے دنوں میں ایک دو باری میں اور کوشش کریں گے, میں نے کسی کو بولا ان سارے سوالوں کو لے, تو اگلی باری میں اس کو بھی کوشش کریں گے ایک بار کلیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. ہرے کرشن شیلا پرپاد کی گور بھی مان
کی